हर इंसान जानता है। जो एग्नोस्टिक्स भी हैं वो भी गफलत की वजह से इनकार करते हैं। दिल के अंदर डीप डाउन ये इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो अल्लाह ने यहां या हसरतन अलल इबाद कह के ये पॉइंट मेंशन कर दिया, हर इंसान की फितरत में अल्लाह का अब्द बनने का पोटेंशियल है। अब इम्तिहान किस चीज का है? जब हर एक में पोटेंशियल है तो फिर इम्तिहान किस चीज का है? उस पोटेंशियल को अपनी विल पावर से एक्टिवेट करने का, ये इम्तिहान है। सारे इंसान अल्लाह ने तो बराबर पैदा किए थे, सबको बराबर की एक्नॉलेजमेंट दी थी। तो अगर आज कोई ये मुसलमान कहता है कि काफिर क्यों जाएगा जहन्नुम में, बिकॉज काफिर ने अपनी इंटरनल फितरा को एक्टिवेट नहीं किया, उसने उसको वही का फ्यूल नहीं दिया। वही का फ्यूल देता तो वो जो पायलट फ्लेम था वो एक रोशन चिराग बन जाता जो दिल के अंदर अल्लाह ने मारिफत का रखा था। लेकिन इंसान उसकी परवाह नहीं करते तो अल्लाह ने ऐसे लोगों की रियलिटी के ऊपर जो है हसरत का इजहार किया है। और इंसान की फिलॉसफी याद रखिए, ये हर इंसान की फिलॉसफी है, चाहे वो कितना ही बड़ा जो है वो फ्रीडम वर्शिपर क्यों ना हो, क्या मैं तो बिल्कुल आजाद रहने वाला हूं। हर इंसान दिस इज अ जनरल फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन बींग, हर इंसान किसी ना किसी चीज का गुलाम होता है। हर इंसान विदाउट एक्सेप्शन, या आप फैशन के गुलाम होंगे, या आप दोस्तों के गुलाम होंगे, या आप करियर के गुलाम होंगे, या आप अपनी डिग्री के गुलाम होंगे, या आप अपनी जॉब के गुलाम होंगे, या आप अपने बिजनेस के गुलाम होंगे, हर इंसान विदाउट एक्सेप्शन किसी न किसी चीज का गुलाम होता है। आप जाके पढ़िए, जर्मन जितने भी आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट मिलते हैं वो कहते हैं हम इंसानों को माशरे में स्लेवरी के अंदर फेंक दिया जाता है विदाउट एनी चॉइस। और जो माशरा कहता है फिर माशरा हमारे साथ साइमन सेज खेलता है। माशरा कहता है खड़े हो जाओ तो हम खड़े हो जाते हैं, माशरा कहता है बैठ जाओ तो हम बैठ जाते हैं। सेम इज द केस विद द फैशन, फैशन कहता है स्लीव्स गायब तो स्लीव्स गायब हो जाती हैं, फैशन कहता है शलवार ट्राउजर बन जाए तो ट्राउजर बन जाते हैं, फैशन कहता है ट्राउजर लेगिंग्स बन जाए तो वो लेगिंग्स बन जाते हैं, वो लेगिंग्स टाइट बन जाए तो टाइट्स बन जाते हैं। मैं सीरियसली बता रही हूँ, आज से 10 साल पहले, 10 साल तो कुछ अरसा भी नहीं है, आज से 10 साल पहले मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी कि मर्द स्किनी जीन्स पहने। आप लोग कर सकते थे इमेजिन? मैं अपने हस्बैंड को 15 साल पहले स्किनी जीन्स के अंदर, खैर अब भी नहीं पहनते बेचारे, 15 साल पहले मैं उनको स्किनी जीन्स में इमेजिन नहीं कर सकती हूँ। आप उस वक्त अपने शौहर को, अपने बेटे को, अपने भाई को स्किनी जीन्स ला के देती हैं, वो दिखाती मुझे क्या वो पहनते कि नहीं पहनते। अच्छा खासा जीन्स की भी पैंट्स की तरह के शेप होते थे, होता था टाइट लेकिन इतना टाइट नहीं होता था। वो औरतें तो पहनती हैं वो तो एक अलग कहानी बेचारी, अल्लाह ताला कुछ भी नहीं होता। मेरी बेटी कहती है सच्चा लूजर्स, हम लूजर हैं, हमें समझ नहीं आती बात। क्यों नहीं समझ आती हमें बात? हकीकत है, जिस चीज को छुपाने का कहा उसी को एक्सपोज करता है, जिस चीज को ढांपने का कहा है हम डिफाइंस में हैं। क्या हम शरीयत का मजाक नहीं उड़ाते? मर्द स्किनी जीन्स मर्द भी नहीं पहन सकते हैं, सतर तो उनका भी है, उनको भी सतर अपना कवर करना है, नेवल टू नी तो उनको भी कवर करना है। लूज पैंट्स पहने अगर पहननी है तो, स्किनी जीन्स की गुंजाइश तो उनके लिए भी नहीं है। लेकिन फैशन है ना, जब फैशन कहता है हम मानते हैं और आंखें बंद करके मानते हैं। आप इमेजिन कर सकती हैं अपनी नानी को ऑफ शोल्डर शर्ट पहने हुए? मैं तो अपनी माँ को इमेजिन नहीं कर सकती, नानी तो दूर की बात है। इमेजिन तो करें आप जरा, आज से 15 साल पहले, 10-15 साल भी बहुत बड़ा अरसा है, 10 साल पहले नानी या आपकी अम्मा ऑफ शोल्डर शर्ट पहनती कैसा लगता? आपके अपने बच्चे नानी को देख देख के जो है पता नहीं कौन कौन सी बातें करते करते, नानी आपको क्या हो गया? बच्चे सच्चे होते हैं ना, नानी इसको ऊपर करें, बच्चों में फितरत सलामत होती है। लेकिन आज हम पहन रहे हैं इसलिए कि हम फैशन के गुलाम हैं। फैशन करने को इस्लाम ने मना नहीं किया, बट अगेन विद इन द बाउंड्री ऑफ शरिया, उससे बाहर मत निकलें। उससे बाहर निकलेंगे तो फिर अपने आप को इंसानों का गुलाम बनाएंगे या बहुत ही कमजोर चीज का गुलाम बनाएंगे। क्या हम इंसान दोस्तों के गुलाम होते हैं? हमारे बच्चे दोस्तों के गुलाम होते हैं। जो दोस्त का इंटरेस्ट है वही मेरा इंटरेस्ट बन जाएगा। जहां दोस्त हैंग आउट करना पसंद करते हैं मुझे भी वहीं जाके हैंग आउट करना है। आप लाख कहती रहे बेटा घर पर बुला लो दोस्तों को, नहीं हमें तो ओशन मॉल या डॉलमेन मॉल जाना है हैंग आउट करने के लिए, इसलिए कि सब फ्रेंड्स वहीं जाते हैं। जो फ्रेंड्स का एक्सेंट होता है वही आपके बच्चे का एक्सेंट बन जाता है। जिस अंदाज में आपके बच्चे के फ्रेंड्स बोलते हैं, आपको पता है ना आजकल की जुबान में तो जिस तरह से 4-letter word इस्तेमाल किया जाता है, मैं तो यहां माइक पे बोल भी नहीं सकती 4-letter word, सब बच्चे बोलने लग जाते हैं, अम्मा के सामने नहीं बोलते। आप कभी ऑब्जर्व कीजिए अपने बच्चों को उनके फ्रेंड्स के सामने बोलते हुए, और कभी ऑब्जर्व कीजिए उनको आपके सामने बोलते। आपके सामने तो आधे से ज्यादा वलीउल्लाह है, इसलिए अपनी अम्मा को जानते हैं ना। अम्मा पकड़ के बंद कर देंगे कमरे में 2 दिन के लिए, ग्राउंड बाहर नहीं आ सकते तुम, ग्राउंडेड हो तुम। यह है होता है, इंसान अगर अल्लाह का गुलाम नहीं बनेगा तो वह अल्लाह से नीचे जितना कुछ भी है बल्कि अपने से भी कमजोर चीज का गुलाम बनेगा। माल का गुलाम होता है इंसान, फैशन का गुलाम होता है, दोस्तों का गुलाम होता है, माशरे का गुलाम होता है। जो चीज माशरे में एक्सेप्टेबल होती है हम उसी पर जिंदगियां गुजारते हैं, जो अनएक्सेप्टेबल है हम उस पर आना क्यों नहीं चाहते, बिकॉज हम माशरे के गुलाम हैं। माशरे में हम फिर ब्लेंड इन कैसे करेंगे, ये एक्सेप्टेबिलिटी। और उसके बाद हम कहते हैं हम इस्लाम को थोड़ी मान सकते हैं या हम शरीयत को थोड़ी मान सकते हैं। वी आर फ्री टू लिव, जैसे चाहो जियो, इफ यू फील इट हैव इट, इफ यू हैव इट फ्लॉन्ट इट। ये नारे हमें दिए गए हैं, और उसके बाद ये नारे देने के बाद, ये स्लोगन्स देने के बाद ये कहा जाता है यू आर फ्री टू मूव, यू आर फ्री टू लिव। जस्ट बिकॉज यू कैन डिसाइड एंड चूज बिटवीन योर आईफोन और गैलेक्सी फोन एंड यू हैव ऑडेसिटी टू से डेट यू आर फ्री, कोई फ्री नहीं है इस दुनिया के अंदर। हम सब जहनी गुलाम हैं, मेंटल स्लेवरी का शिकार लोग हैं हम सब के सब। अगर हमने अपने आप को अल्लाह का गुलाम ना बनाया तो हम बहुत कमतर चीजों के गुलाम होंगे। पैसे के गुलाम इंसान कैसे आराम से बन जाते हैं हम सब जानते हैं। आपने वो शेर सुना है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। एक अल्लाह के गुलाम बन जाएं, आप ये सारे शैकल्स तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। आपने कई दफा औरतों को सुना होगा, जितनी भी खवातीन पाँव में ब्लिस्टर्स के बावजूद हाई हील्स पहनती हैं, 9 to 5 जॉब करने वाले मल्टीनेशनल्स के अंदर जॉब करने वाली खवातीन, जहां पर अब थोड़ा सा कुछ बेहतरी आना शुरू हुई कि अब लोगों ने कहा कि नहीं हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी है, बट इट्स अ वेरी कॉमन फिनोमेना जो कि आपको अक्रॉस द कल्चर्स, अक्रॉस द कंट्रीज, अक्रॉस द वर्ल्ड नजर आता था कि एक डिमांड होती थी कि जो सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी होगी उसका एक सेटअप होगा, उसका एक गेटअप होगा, वो हील्स के बगैर नजर नहीं आएगी। और जब उससे किसी ने पूछा कि आप हील्स पहने हुए हैं और आपके पाओ के अंदर ब्लिस्टर्स पड़े हुए हैं, पहले तो उसने कहा आई फील कंफर्टेबल इन दीज हील्स, उसने कहा आपके पाओ में तो छाले पड़े हुए हैं। Then she said, because people think I look nice in them. और फिर हम कहते हैं हम आजाद हैं, हम में लिबरेशन है। इस्लाम जो कॉन्सेप्ट लिबरेशन का देता है, जो हुर्रियत का कॉन्सेप्ट इस्लाम देता है, वो दुनिया का कोई तरीकाकार, कोई मैथडोलॉजी, कोई पॉलिसी, कोई मजहब नहीं दे सकता। एक अल्लाह के गुलाम बन जाएं, आप सबसे आजाद हो जाएंगे। लोगों की नजरें आप नहीं देखेंगे, लोगों के रवैयों को आप नहीं देखेंगे, आपको असल असल आजादी महसूस होगी, असल लिबरेशन महसूस होगी। और जो अल्लाह का गुलाम नहीं होता उस पर तर्स खाना चाहिए आपको, हमदर्दी होनी चाहिए उसको, आपको उससे, ताकि आप उसको सीधे रास्ते पर लाकर कामयाब अब्द बना सकें। यही हसरत आपको यहां नजर आ रही है जब अल्लाह ने कहा या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहजीउन। व्हाट अ ट्रेजेडी! अल्लाह ने इस तबाह होने वाली कौम को ट्रेजेडी कहा है। हसरा अरबी जुबान में कहते हैं हिया शिद्दतुन नदम व हुजन व तहसर। गम के साथ किसी चीज को ट्रेजेडी मेंशन करना, बहुत ही ज्यादा दुख के साथ किसी चीज को ट्रेजेडी मेंशन करना, बहुत हसरत के साथ किसी चीज को ट्रेजेडी मेंशन करना, डीप सैडनेस आपको इन अल्फाज के अंदर मिल रही है कि अल्लाह ने इनको जन्नत कमाने का, अल्लाह की रजा कमाने का मौका दिया था 3 रसूलों के जरिए, मगर इन्होंने उल्टा अपनी कौम को थ्रेटन किया, अपने रसूलों को थ्रेटन किया और अपनी अपॉर्चुनिटी को लूज कर दिया। आप देखें यहां जो आयत खत्म हुई है इल्ला कानू बिही यस्तहज़ीउन, अल्लाह ने ये नहीं कहा वो जालिम थे, वो काफिर थे, वो नाफरमान थे इसलिए कि उन्होंने अपने रसूलों को टॉर्चर करने की धमकी दी थी, अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह ने कहा यस्तहज़ीउन, मजाक उड़ाते थे, रसूलों का मजाक किया करते थे। ये मजाक से क्या मेंशन करना यहां मकसूद है, ताकि वो कुरैश या आने वाले तमाम लोग जो अल्लाह के दिए हुए दीन और शरीयत और वही का मजाक उड़ाएंगे वो सुन लें, गुमराही की इब्तदा मजाक उड़ाने से होती है। पहले इंसान चीजों को लाइटली लेता है, लाइट मोड में फरिश्तों पर जोक्स बन रहे हैं, हूरों पर जोक्स बन रहे हैं, जन्नत और जहन्नुम पर जोक्स बन रहे हैं। हम जहन्नुम में अपने साथ जो है वो पहल का एयर कंडीशनर लेकर जाएंगे, दीज आर द जोक्स। हम जहन्नुम में तुम्हें ढूंढ लेंगे, फिर हम इकट्ठे हैंग आउट करेंगे। गुमराही की जो बिगिनिंग है वो मजाक से होती है। दीन को लाइट मोड में लेना, ये गुमराही का पहला स्टेप है, भटकने का पहला स्टेप है। याद रखें, अल्लाह ने कुरान में बड़ी कौमों का जिक्र किया जो गाफिल थी, जो जाहिल थी, या बड़े लोग थे जो गाफिल थे और जाहिल थे। अल्लाह गाफिलीन को भी हिदायत दे सकता है, अल्लाह जाहिलीन को भी हिदायत दे सकता है, अल्लाह ज़ालिमीन को भी हिदायत दे सकता है, अल्लाह मुस्तहज़ीन को हिदायत नहीं देता। मजाक उड़ाने वालों को हिदायत नहीं मिलती, ये अल्लाह का उसूल है। आप पढ़ लें सारे आपके इस्लामिक एकेडमिया के अंदर, दिस इज द रूल एंड द प्रिंसिपल। दीन का मजाक उड़ाने वालों को हिदायत नहीं मिला करती, ये अल्लाह का उसूल है। तीसरी चीज स्कॉलर्स कहते हैं, यहाँ मजाक मेंशन करने से क्या मकसूद है, वो कहते हैं जब कौमें रसूलों का और वही का मजाक उड़ाना शुरू कर दें तो उनका डिस्ट्रक्शन क्लॉक ऑन हो जाता है। हमारे माशरे में क्या इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया जाता है? हम एक्सट्रीम्स पर चलते हैं ना, बहुत एक्सट्रीम्स पर। एक एक्सट्रीम पर हमसे ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि आप ये कहें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, एक ये एक्सट्रीम है। और एक एक्सट्रीम हमारे अंदर ये है कि हम हदीसों को इतना बिलिटल कर दें, इतना बिलिटल कर दें कि सही हदीस को भी देखने की जरूरत नहीं है। ये भी हमारे यहाँ है कि खुद मुसलमान कहते हैं कि क्यों अल्लाह के रसूल ने इतनी ज्यादा शादियां की। नाउज बिल्ला, नाउज बिल्ला, जिन ओरिएंटलिस्ट ने ये जुमले बोले, मुसलमानों के मुंह से वो जुमले निकलते हैं, नाउज बिल्ला, मुंह से निकालते हुए भी खौफ आता है। ओरिएंटलिस्ट क्या कहते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? अल्लाह के रसूल नाउज बिल्ला पीडियोफीलिया का शिकार थे, इसलिए कि हजरत आयशा से जब उन्होंने निकाह किया था, शी वॉज जस्ट 9। और मुसलमानों की जुबानें ये बोलने लग जाए, जरूरत और हिम्मत तो देखें। और उसके बाद मुस्कुरा रहे हैं और हंस रहे हैं कि शायद रसूल अल्लाह की नाउज़ुबिल्ला सेक्सुअल अर्ज बहुत ज्यादा थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आप क्या कह सकते हैं? और जब कौमें मजाक का रास्ता इख्तियार कर लेती हैं, उनका डिस्ट्रक्शन क्लॉक ऑन हो जाता है। ये अल्लाह की सुन्नत है और यही चीज यहां मेंशन की गई है। यानी यूं समझें, इस्लाम का क्या इस्लामी सजाओं का मजाक उड़ाना इसी कैटेगरी में आएगा? एग्जैक्टली इसी कैटेगरी में आएगा। इस्लामी सजाओं का मजाक उड़ाना इसी कैटेगरी में आएगा। और आज हम देख लें हमारे इंसानियत परस्त एनजीओस कैसे आराम से हम इस्लाम की सजाओं के खिलाफ बोलते जाते हैं और हंसते रहते हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अब रजम की सजा होगी 2018 में, अब कैपिटल पनिशमेंट होगी, अब जान के बदले जान लिया जाएगा, और मजाक में बात हो रही है। कुरान के अल्फाज हैं, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक, जान के बदले जान। और टॉक शो में बैठकर आप मजाक बना लें इस बात का और ऊपर से हंसें, तो आप अल्लाह के अजाब को दावत नहीं दे रहे तो क्या कर रहे हैं? अल्लाह का अजाब इंडिविजुअल आ सकता है, याद रखें। कौम के तौर पर पूरी कौम वाइप आउट नहीं होगी, वो नहीं होगा अब, लेकिन इंडिविजुअल अजाब आ सकते हैं। आगे फरमाया आयत नंबर 31 में, अलम यरो कम अहलकना कबलहुम मिनल कुरून, क्या इन लोगों ने देखा नहीं कि हमने कितनी कौमें इनसे पहले तबाह कर दी? अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, और इनमें से कोई भी इनकी तरफ नहीं पलटने वाला। हम जानते हैं कि ना सिर्फ अल्लाह ने तारीख में मिसालें रखी हैं कि अल्लाह ने कौमें तबाह की, कुरून कर्न की जमा है, कर्न किसी बस्ती के लिए किसी कौम के लिए आता है। अल्लाह ने सिर्फ कौमें तबाह नहीं की, अल्लाह ने इंडिविजुअल्स को भी तबाह किया है। अल्लाह का अजाब इंडिविजुअल्स पर भी आया और कुरान ने उसको मेंशन किया है, और कुरान में प्रोमिनेंट एग्जाम्पल इंडिविजुअल को अजाब देने की क्या है? शाबाश, कारून की है। कारून को अल्लाह ताला ने इंडिविजुअली लिटरली वो अजाब दिया जो सूरह कसस में आयात आती हैं, उसकी कमी, उसकी कमजोरी, उसके गुनाहों को मेंशन किया गया, और वही अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि अल्लाह कौमों को तबाह कर देता है, हालांकि अल्लाह ने एक इंडिविजुअल को तबाह किया था। तो कारून की मिसाल आपको कुरान में मिलती है, इसलिए कि कारून किस तरह दौलत कमाता था, सूरह कसस की आयत नंबर 76 में आता है, फबगा अलैहिम, उसने अपनी कौम के साथ बगावत की थी। कारून असल में था बनी इसराइल में से, और बनी इसराइल फिरौनियों की गुलाम कौम थी। होता यह है कि जब हुक्मरान गुलाम बनाते हैं, तो उनको अपनी इन गुलाम कौमों के अंदर जासूसी भी करवानी होती है कि कहीं इनमें आपस में रिबेलियन तो नहीं जमा हो रहा, कहीं ये हमारे खिलाफ कोई यूनियन तो नहीं बना रहे, कहीं ये हमारे खिलाफ खड़े तो नहीं हो जाएंगे। तो जब भी हुक्मरान, हमेशा से ये उसूल रहा तारीख का, जब भी हुक्मरान कोई गुलाम कौम अपने साथ रखते थे तो वो उस गुलाम कौम के अंदर जासूस छोड़ा करते थे ताकि उनको पता चले कि ये गुलाम कौम जो है कहीं हमारे खिलाफ किसी मूवमेंट में तो नहीं इन्वॉल्व हो रही। बनी इसराइलियों में ही एक शख्स कारून था, फबगा अलैहिम, तो बगावत की इसने उनके खिलाफ। किसके खिलाफ बगावत की? अपनी कौम के खिलाफ, बनी इसराइल के खिलाफ इसने बगावत की थी। था बनी इसराइलियों में से, था गुलाम कौम में से, लेकिन फिरौनियों का, जिसको आप कहते हैं ना कि उनकी बेहतरीन नजर का वो हो चुका था, उसको बड़ी मिनिस्ट्री मिल चुकी थी, पोजीशन मिल चुकी थी, ये बनी इसराइलियों की खबरें फिरौनियों तक पहुंचाया करता था, और जब ये पहुंचाता था तो बदले में इसको क्या मिलता था? माल मिलते थे, पोजीशन मिली हुई थी। कहा जाता है जिस इलाके में रहता था, इलाका तो बनी इसराइलियों का ही था ना, गुलाम कौम के इलाके में रहता था वो गुलाम कौम जिनके पास हार्डली खाने को खाना होता था और पहनने को कपड़ा होता था, उस गुलाम कौम, उस फकीर कौम के मोहल्ले में, इलाके में इसका महल मौजूद था। और खाली महल मौजूद नहीं था, कारून के खजानों की तफसील आप सूरह कसस में पढ़ती हैं। उसके खजाने ऊंटों पर काफले की शक्ल में ट्रेवल नहीं करते थे, खजानों की चाबियां संदूकों के अंदर, बॉक्सेस के अंदर, ऊंटों के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती थी। तो अल्लाह ताला ने इस शख्स को मेंशन किया है एज एन इंडिविजुअल जिसको अल्लाह ने सजा दी। सूरह कसस की आयत नंबर 79 में आता है, फखरजा अला कौमिही फी ज़ीनतिही क़ाल अल्लज़ीना युरीदून अल हयात अद्दुनिया या लैत लना मिथला मा ऊतिया क़ारून। हमेशा से लोग ऐसे रहे हैं ना जो दुनियावी वजाहत को देखकर बड़े इम्प्रेस होते हैं, तो बनी इसराइलों में ऐसे लोग थे जो इसकी वजाहत को देखकर, इसकी पोजीशन को देखकर बड़ा इम्प्रेस होते थे और कहा करते थे कि हमें ऐसा माल क्यों नहीं दिया गया। इसी सूरह कसस में आगे की आयात में आता है कि अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी कौमों को तबाह नहीं किया क्या? और फिर आप जानते हैं कि इसको कैसी सजा दी गई थी कि इसको जमीन में इसके तकब्बुर की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से धसा दिया गया था, और ये कहा जाता है कि ये कयामत तक जमीन के अंदर धंसता चला जाएगा। कहां एक तरफ कौम का तबाह होना और कहां एक तरफ इंडिविजुअल का तबाह होना। असल में तो कुरैश को जगाया गया है कि कहीं ये ना समझना ये सुनकर मुसलमानों से कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद, क्योंकि वो रहमतल आलमीन है, अब कुरैश के ऊपर इंडिविजुअल अजाब, अब कुरैश के ऊपर कलेक्टिव अजाब नहीं आएंगे, कहीं किसी खुशफहमी का शिकार मत रहना, इंडिविजुअल अजाब अभी भी आएंगे। और आज के मुसलमान भी सुन लें, इंडिविजुअल सजाएं आज भी आ सकती हैं और आती हैं। कहां किसी पूरी कौम की नाफरमानी की वजह से उसको एक स्केल में रखना और दूसरी तरफ एक शख्स को उसकी नाफरमानी के साथ स्केल में रखना और दोनों को बराबर बराबर कंसिडर करना। क्यों? तकब्बुर इतनी बुरी चीज है, इसका तकब्बुर इसको पूरी कौम के बराबर के गुनाह की इंटेंसिटी का शिकार कर गया कारून को, और यही तकब्बुर आपको कुरैश की कौम में नजर आता था। तो अल्लाह ताला ने इनको यहां पर वॉर्न कर दिया, इनको मेंशन कर दिया, अवलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून, क्या उन्होंने गौर से नहीं देखा कि अल्लाह ने कितनी ही कौमें इससे पहले हलाक कर दी, अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, अब तबाहशुदा कौमें जो हैं वो वापस नहीं आएंगे। यानी जो तारीख से सबक ना ले, सुन सुन कर सबक ना ले, उसका साथ क्या मामला है, कौन सी सद उसके सामने मौजूद है? वमिन खल्फिहिम सद्दन, ये कुरैश थे जो अपनी तारीख से सबक नहीं ले रहे थे। इसी बात को यहां पर इस अंदाज में आपको, यहां आयत नंबर 9 वाली बात को यहां इस अंदाज में लाया गया है। अन्नहुम इलैहिम ला यरजून की एक इंटरप्रिटेशन ये भी की गई है कि ये वो लोग थे जिनमें बड़ा तकब्बुर था, अपने कबीले के नाम पर, अपने कबीले की पोजीशन पर बड़ा नाज होता था कि हम तो फला हैं। जैसे लोग बाज आज लोग नहीं कहते हैं जब वो रिश्तों के लिए जाते हैं प्रपोजल्स के लिए, भाई हम तो सिंधी, हम सिंधियों में शादी करेंगे, भाई हम तो उर्दू स्पीकिंग है, हम उर्दू स्पीकिंग में शादी करेंगे, भाई हम तो पठान हैं, हम तो पठानों में शादी करेंगे। ये जो मिजाज है, ट्राइबल आइडेंटिटी पर फखर, याद रखिए ट्राइबल आइडेंटिटी मना नहीं है। आप रिश्ते के लिए जाती हैं, प्रपोजल के लिए जाती हैं, आप अपने बेटे के लिए ढूंढ रही हैं, और आप लड़की की वालदा से पूछती हैं कि आपकी कास्ट क्या है, इसमें कोई मजायका नहीं है, पूछा जा सकता है, लेकिन पूछने की हद तक तो बात हो। अब पूछने के बाद अपने आप को आला समझना और उनको घटिया समझना, इसकी कहीं गुंजाइश नहीं है। ये तो उम्मत को फाड़ने वाली बात है, और हम देख लें कि हम उम्मत को फाड़ने वाली बातें आजकल कितनी करते हैं। हम कहते हैं हम बरादरी से बाहर निकाह नहीं करते। कौन सी बरादरी? वो बरादरी जिसको अल्लाह ने सिर्फ आपके लिए आइडेंटिफिकेशन मार्क बनाया था, आपने उसको फखर का जरिया बना लिया, तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का बॉन्ड कहाँ है? कहाँ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात? इस चीज को तोड़िए अपने माशरे से। एक ये भी हमारी गुलामी है, जब हम बेटे और बेटियों की रिश्ते और शादियां करते हैं तो हम इतना ज्यादा दुनिया परस्त हो जाते हैं। बेटी और बेटे के निकाह के लिए जिस तरह से प्रपोजल तलाश किया जाता है, वो हमारी दुनियादार होने की अलामत है, वाजे नजर आता है। हम कहते हैं हम क्लिफ्टन में रहते हैं तो हम गुलशन से बहू क्यों लाएं? क्यों, गुलशन में इंसान नहीं रहते? ऐसे सब चुप करके मुझे देख रहे हैं जैसे मैंने कोई बहुत ही पहली दफा ऐसी बात की। बास माँ यहां तक कहती हैं हमारे बेटे ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो हम कराची यूनिवर्सिटी की बहू कैसे ले आए? फिर हम कहते हैं हम दुनिया परस्त नहीं है, हम दुनिया परस्त हैं। हम कहते हैं उनका मेंटल मैच नहीं होगा। अगर दोनों में खुदा खौफी होगी, कैसे हो सकता है मेंटल मैच ना हो जाए? अगर दोनों में खशियत रब होगी, अगर औरत में बीवी बनने के बाद शौहर के लिए इज्जत और मुकाम होगा, और मर्द में शौहर बनने के बाद कवाम की जिम्मेदारी, इखलाक के साथ बीवी की इज्जत करना और उसकी जिम्मेदारियां पूरा करना होगा, कैसे हो सकता है मेंटल मैच ना हो जाए? ये हमारे अपने दिलों की कमजोरियां, ईमान की कमजोरियां और दुनिया की मोहब्बत है। ये हमारी वाहन की बीमारी है। आप देखें कितनी बच्चियां अपने घरों में बैठी हैं। इतनी बच्चियां क्या दूर की बात है, माएं अपने बेटों की शादियां नहीं करती? 32 32 साल, 33 33 साल के हो जाते हैं, बाज दफा 35 35 साल के हो जाते हैं। जवान मर्द है वो पूरा 35 साल का, 33 साल का, और आपने उसका अब तक निकाह नहीं किया, और आप पूछें तो कहती है कोई सूटेबल मैच नहीं मिला। क्या दुनिया में औरतों की, लड़कियों की कमी है? कमी तो खैर नहीं है, हमारे अपने मिजाजों की तंगी है कि हमें अपनी नाक के नीचे बच्चियां नजर नहीं आ रही होती हैं। और सिर्फ लड़के वाली माओ का दिमाग खराब नहीं है, आई कैन से दिस, दिमाग खराब नहीं है बिकॉज मुझे बहुत पाला पड़ता है। साजदा बैठी है यहाँ पे, लड़की की माओ का भी बहुत दिमाग खराब है। हम समझते हैं लड़का हो 24 साल का और कमाता हो 50 साल के मर्द के बराबर, अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो, बैंक बैलेंस इतना हो, भाई कुछ तो रियल इस्टेट होनी चाहिए। अरे अल्लाह के बंदे, अगर घर भी होगा और रियल इस्टेट अलग से एक प्लॉट होगा, कोई आसान काम है? लेकिन हम चाहते हैं यही है, 24 साल का लड़का हो, फुल पैकेज चाहिए, बिल्कुल जैसे लड़के की अम्मा को चाहिए 18 साल की बच्ची। अच्छा 18 साल में डॉक्टर भी बन जाए, अब ये तो पता नहीं कौन सा जमाना होगा इसमें 18 साल की डॉक्टर भी बन जाएगी। हाँ रोटियां भी बनानी आती हो आजकल की बच्चियां, और मेडिसिन पढ़ी हुई या इंजीनियरिंग पढ़ी हुई या फाइनेंस पढ़ी हुई, और आप उनसे तवक्को करेंगे वो रोटी बनाएंगी? आपकी और मेरी जैसी आंटियों को तो रोटी बनानी आती नहीं है, वो रोटी बनाएंगी? प्लीज अपने दिमागों को सीधा कीजिए, प्लीज अपने जहनों को खोलिए। अल्लाह ने मुझे और आपको बहुत हायर मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है। हम 6 6 10 10 साल तो औलाद के रिश्ते ढूंढने में लगा देते हैं, इतनी दिनों में तो आप रब को ढूंढते ही तो आपको क्या कुछ ना मिल जाता। इन चीजों से बाहर निकलिए, जिंदगी आसान कीजिए, लोगों के लिए हमदर्दी लेकर आइए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे माशरे के अंदर बुराइयां फैलाने का, निकाह मुश्किल जिना आम, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ रूल। जिस माशरे में निकाह आम नहीं होगा वहां जिना आम होगा, और आज जिना आम है। हर गली के बाहर आपको औरतें खड़ी हुई मिल जाती हैं, हर होटल आपको कमरा देने को तैयार है, हर बड़ी बिल्डिंग के अंदर फ्लैट्स मौजूद हैं। आपको क्या लगता है 35 साल का बेटा हो गया, जवान मर्द है, आसपास का फितना तो देखिए, जायंट साइज की मॉडल्स उसको सब जगह बिलबोर्ड्स पर लगी हुई नजर आती हैं, लॉन का नामो निशान नहीं होता और इतना बड़ा मुंह लगा हुआ होता है? पर दिस इज रिडिक्यूलस. आप लॉन का एड लगा रहे हैं तो भाई लॉन दिखा दो ना, इतना बड़ा औरत का मुंह क्यों दिखा रहे हैं? जिस माशरे में निकाह आम नहीं होगा, आप सोचें जवान बेटा आपका, वो तस्वीरें, वो बिलबोर्ड्स, वो मैगजीन, फेसबुक, हर एक के हाथ में एक से एक लॉन का एडवर्टाइजमेंट चलता है, हर चीज उसके हाथ में, यूट्यूब उसके हाथ में, हर चीज है उसके हाथ में, जस्ट ऑन अ सिंगल क्लिक. और आप समझते नहीं, बहुत बहुत शरीफ बेटा है मेरा. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शरीफ? कितनों को मुंह मार चुके हैं आपको अंदाजा ही नहीं है. आप समझती रहे कि बहुत शरीफ है, और अपनी बेटियों की भी हिफाजत कीजिए. बाहर से चेहरों से मासूम नजर आने वाली बेटी दुनिया के चैलेंजेस का अगर शिकार हुई, अगर बेटी जिना में इन्वॉल्व हुई इसलिए कि आपके बहुत हाई स्टैंडर्ड्स की वजह से उसका रिश्ता कोई सेटल नहीं हो पा रहा था, तो बेटी की गलती में मां का हिस्सा बराबर का होगा. जाकर देखिए हमारे यहां दवाइयां बिकने में और बर्थ कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्शन चीजें बिकने में कोई प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का नहीं चाहिए होता है. कहां जाता है? क्यों मौलवी इतना बोलते हैं कि बर्थ कंट्रोल मेथड नहीं होने चाहिए, खत्म होने चाहिए? इतना फैल गया इस बीमारी का मर्ज आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ निकाह कि बेचारों को बोलना पड़ता है कि इसको खत्म ही कर दो, हालांकि एक जायज चीज थी विद इन द बाउंड्री ऑफ निकाह. लेकिन इसका मिसयूज तो आप देखें. अनमैरिड बच्चियां, मेरा एक प्रोजेक्ट है पिछले कई सालों से, क्योंकि उस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सी बच्चियां मुझे शायद वो समझ लेती हैं कि मैं हमदर्दी में आके उनको ऐसा मशवरा दे दूंगी. मैं एंटी अबॉर्शन कैंपेन चलाती हूँ पिछले तकरीबन 8-10 साल से. अक्सर बच्चियां मेरे पास फोन करती हैं, क्या उम्र है, 23 साल 24 साल, हम इन्वॉल्व और रोती हैं, हम इन्वॉल्व हो गए थे, खुदा का वास्ता हमें कोई डॉक्टर बता दें हम कंसीव कर गए. किस दो अनमेरिड बच्ची, मेरी माँ को पता ना चले, मुझे कोई ऐसी डॉक्टर बता दें कि जहां जाके मैं टर्मिनेशन करा दूं, मैं अबॉर्शन करा दूं, कोई टेबलेट बता दें मुझे प्लीज. हम किस माशरे में रह रहे हैं? हम किस माशरे का हिस्सा हैं? हम दीन को मजाक बनते अपने आंखों के सामने देखते रहेंगे और हम समझते हैं हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा? हमारी जात और हमारे घरों के अंदर उसका इम्पैक्ट दाखिल हो चुका है. आंखें खोलिए. अब भी अगर मुसलमानों ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना किया, अब भी अगर हमने इस्लाम की कदर ना की, तो इंडिविजुअल अजाबों की कमी नहीं है. अल्लाह हम सबको, हमारी औलादों को महफूज करके रखे. निकाह को आम कीजिए, अपनी नस्ल और अपनी कास्ट और अपने खानदान पर फख्र करना छोड़ दीजिए. फख्र सिर्फ और सिर्फ किसको करना चाहिए? अव्वल तो फख्र वो भी नहीं, अल्लाह की नजर में इज्जत वाला कौन है? सूरह हुजरात में आता है, कौन है जो इज्जत, जो तकवे वाला है? अल्लाह की नजर में आपकी वजाहत आपके खानदान से नहीं, आपके तकवा से और आपके अल्लाह के साथ अफिलिएशन से है. यही बात यहां बताई गई. और इनको भी बता दिया गया, कुरैश को बता दिया गया कि अगर तुमने तारीख से सबक नहीं लिया तो तुम्हारा भी नामो निशान बिल्कुल इसी तरह खत्म कर दिया जाएगा. आगे आयत नंबर 32 में फरमाया, 32 में, व इन कुल्लम्मा जमीउन लदैना महदरून, तमाम कौमें विदाउट एक्सेप्शन हमारे सामने पेश की जाएंगी, हाजिर की जाएंगी. अल्लाह ताला ने बता दिया कि देखो एक दिन तुम सबको मेरे सामने आकर खड़ा होना है. कहां बचकर जाओगे? कहां मुंह छुपाओगे? गुजरी हुई कौमें, अल्लाह ने पीछे कहा था ना पिछली आयत में, अन्नहुम इलैहिम ला यर्जिउन, उन पिछली कौमों में से कोई भी तुम्हारी तरफ नहीं पलटेगा. यहां अल्लाह ताला ने क्या कहा कि तुम्हारी तरफ नहीं पलटेगा. जो कौमें हलाक हो गई तुम उनसे नहीं मिलोगे. तुम मर जाओगे तो अपनी औलाद से मिल नहीं सकोगे, लेकिन एक ग्रैंड गैदरिंग होने वाली है. वह इन कुल्लु लम्मा जमीउन लदईना, हमारे पास एक ग्रैंड गैदरिंग होने वाली है. एवरी सिंगल वन ऑफ देम, जो क्रिमिनल थे अल्लाह सबको निकाल कर और सब इंसानों को इकट्ठा कर लेगा. और फिर हर कोई, मुहदरून आता है किसी को ऐसे हाजिर करना कि अब वो अपना केस प्रेजेंट करे. मुहदरून, हर कोई अल्लाह के सामने आएगा और अपनी नाफरमानी की वजह बताएगा. किसकी जुबान खुलेगी? अलजब्बार और अलकहार के सामने. लिमन अलमुल्कुल यौम अलवाहिदुल कहार, उस दिन की बादशाहत किसके पास है? अल्लाह के पास. और कैसे उस दिन अल्लाह के सामने किसी इंसान की जुबान से अपने गुनाह की जस्टिफिकेशन और एक्सक्यूजेस में अल्फाज निकल सकेंगे? अल्लाह ने कहा हर एक अपना केस प्रेजेंट करेगा, मेरी तरफ सबको पलटना है. इंसान अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ मजबूत रखे. दुनिया के साथ ताल्लुक तो किसी वक्त भी टूट जाएगा. कुरैश को समझा दिया गया, आपको बताया था कुरैश में रेजरेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं था, मरने के बाद उठने का कॉन्सेप्ट नहीं था. تو قریش کو وارن کیا گیا اس مقام کے اوپر، اس لیے کہ یہ دوسرے حصے کی آخری آیت ہے، یہاں پر دوسرا حصہ مکمل ہو رہا ہے، کہانی مکمل ہو رہی ہے اس پوائنٹ پر. سو قریش کو ایٹ دا اینڈ کنکلوژن کے اوپر یہ بتا دیا گیا، تم آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتے، تمہیں لگتا ہے موت کے بعد دوبارہ اٹھائے نہیں جاؤ گے، یو فیل دیٹ دیٹ ڈیتھ از دا لیورر، مر کے سب مٹی ہو جائیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے، سب کو میرے سامنے اکٹھے ہونا ہے. دیکھیں مر کے مٹی نہیں ہونا سب نے، اس بات کو ہمیں بھی بار بار اپنے آپ کو یاد کرانے کی ضرورت ہے. انسان سمجھتا ہے مر جائیں گے تو دیکھا جائے گا، مر جائیں گے تو دیکھا جائے گا، اس کے بعد تو اصل زندگی شروع ہوگی، حساب کتاب شروع ہوگا. انسان کہتا ہے آج جی لو جو انجوائے کرنا ہے، یو اونلی ینگ ونس، یو اونلی لیو ونس، کل کس نے دیکھی ہے؟ جب آپ یہ بولتے ہیں جملے کل کس نے دیکھی ہے، تو اس کا مطلب ہے آخرت کا کانسیپٹ ڈسٹریکٹ ہو گیا آپ کا. تو مسلمان کے لیے تو یہ جملہ ہو ہی نہیں سکتا کل کس نے دیکھی ہے. مسلمان تو جانتا ہے کل کا پیپر کھلا ہوا ہے، آخرت میں سوال جواب کہاں سے شروع ہوں گے، کن تین سوالوں سے بات معاملہ قبر میں شروع ہوگا، اور پھر ایک ایک سٹیپ کر کے کیسے معاملہ آگے بڑھے گا، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے. اگر مر کے سب مٹی ہونا ہوتا تو آپ ڈاکٹر مرتے، انجینئر مرتے، یا کسی مافیا کا بہت بڑا گینگسٹر بن کے مرتے، چور مرتے یا زانی مرتے، کیا فرق پڑتا؟ اللہ ہر ایک کو اس کے حساب کے مطابق حساب کتاب کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قریش کو بات واضح کر دی کہ اپنے آخرت کے عقیدے کو درست کر لو، اپنے تکبر کو ختم کر دو، اپنی تاریخ سے سبق لو، تاکہ تمہارے لیے آنے والا وقت جو ہے وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور ان کی فرما برداری میں گزرے. اس مقام پر الحمدللہ سورت یاسین کا دوسرا حصہ ختم ہوتا ہے. ایک سمری اگر آپ اس کی دیکھیں تو آپ کو اس میں ایک قریہ والوں کی کہانی ملی، جس قریہ میں اللہ تعالیٰ نے تین رسول بھیجے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا جرم بھی واضح کیا. ایک تو یہ بیسک کہ ان میں شرک تھا، اور دوسرا ان کا جرم یہ واضح کیا کہ وہ اپنے رسولوں کی دعوت پر کان نہیں دھرتے تھے، رسول کی توحید کی دعوت کے اوپر ان کو یہ سننا گوارا نہیں ہوتا تھا. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی سٹرگل کو مینشن کیا کہ ایک مومن کو اللہ نے وہ سٹیمنا اور وہ کنوکشن دیا کہ وہ رسولوں والی دعوت کر کے گیا. قوم نے اس مومن کو سزا دی کہ اس کو قتل کر دیا، اللہ نے اس کو جنت میں داخل کیا. اللہ محنت کرنے والوں کی، قربانیاں دینے والوں کی محنت کو رائے گاہ نہیں چھوڑتا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو بھی اس کہانی سے سبق دے دیا کہ اپنے پیچھے جو دیوار ہے اس کو گراؤ، اپنی تاریخ سے سبق حاصل کرو، اور اپنے مستقبل اور حال کو بہتر کر لو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اس قرآن سے میکسیمم فائدہ اٹھا کر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے لیے مسلمان بن کر زندگی کا ہر فیصلہ کرنا آسان بنا دے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ باقی الحمدللہ آج دسواں رمضان آپ کا مکمل ہو رہا ہے، اللہ سب کے روزے قبول فرمائے، اور اللہ آگے 20 دنوں میں بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نافعنی و ایاکم بی آیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بی حمدیکا نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.